समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बज चुके हैं और ये समय होता है हमारे न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। इसमें हम देश विदेश के समाचार आपको बताएंगे, खेल जगत की, आर्थिक जगत की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। बहुत कुछ रहेगा आधे घंटे के इस कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
हेलो प्रियंका, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद मी शगुन चोपड़ा एंड प्रियंका। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टुडे, सो कीप लिसनिंग। वी हैव रिपोर्ट्स, वी हैव कैप्सूल्स, ऑल्सो बिजनेस अपडेट्स एंड ट्रिब्यूट्स एंड अ लॉट मोर, सो मेक श्योर लिसनर्स यू स्टिक अराउंड विद अस टिल द एंड। वील बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट, शैल वी?
बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ में 24 माओवादी मारे गए हैं।
पंजाब पुलिस रिमूव्स प्रोटेस्टिंग फार्मर्स फ्रॉम शंभू एंड खनौरी बॉर्डर्स। हरियाणा पुलिस स्टार्ट्स रिमूविंग सीमेंटेड बैरिकेड्स।
उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू।
पारसी न्यू ईयर फेस्टिवल नवरोज बींग सेलिब्रेटेड टूडे।
अमरीकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया।
BCCI announces cash reward of 58 crore rupees for Team India following their victory at ICC Champions Trophy 2025.
और खेलो इंडिया पैरा गेम्स आज शाम नई दिल्ली में शुरू होंगे।
And now listeners, it's time for our segment Dateline India, and today we will talk about not just one but 2 topics. Today it's World Sparrow Day and Navroz Day. First, let's begin with World Sparrow Day. Well, not more than a decade ago, Priyanka, we used to wake up to the sounds of the house sparrow rather than the mechanical alarm clock, which was a common occurrence. And these little birds are not much to look but, and they, from the peaceful mornings in villages to the hustle and bustle of cities, well, sparrows, they once fill the air with their cheerful chirps like this.
बिल्कुल, और भाई मैं कहूंगी इससे श्रोता हूँ, आपको वो प्यारी सी चिड़िया याद है जो कभी हमारे घर का हिस्सा हुआ करती थी और इतनी अपनी कि जब चाहे मुंडे पर आ बैठे, पेड़ पर फुदकने लगे या छत पर डेरा बना ले, और हम भी उसके लिए दाना पानी रखते थे। गौरैया इतनी अपनी थी कि कभी लगा ही नहीं उसे उड़ाकर भगा दिया जाए, लेकिन कब ये चिड़िया हमारे दृश्य से गायब होने लगी पता ही नहीं चला। स्थिति ये हो गई कि उसके संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाने लगा। आज उसी प्यारी छोटी चिड़िया को समर्पित है ये दिन।
Well, flocks of these tiny birds, Priyanka, we used to create, you know, unforgettable memories with them. And over time, as you are speaking about it, these little friends have vanished from our lives. And once they were abundant, the house sparrow, as rightly their name is suggested, they are now a rare sight and a mystery in many places. And to raise awareness and protect these small creatures, World Sparrow Day is celebrated every year on March 20th. And the theme of this year's World Sparrow Day is a tribute to nature's tiny messengers. And this aims to restore human affection for sparrows and also inspire people towards conservation activities alike.
बिल्कुल, विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत 2010 में पक्षी संरक्षण संगठन नेचर फॉरएवर द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। ये आयोजन 50 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इसका लक्ष्य यही है कि गौरैया की रक्षा करना और उनकी संख्या में कमी को रोकना। नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने विश्व गौरैया दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक समर्पित वेबसाइट भी बनाई है। इस वेबसाइट में दुनिया भर की गौरैया की अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानकारी और तस्वीरों का एक बड़ा संग्रह है। 2012 में घरेलू गौरैया यानी हाउस स्पैरो, जिसको हम कहते हैं, दिल्ली का राज्य पक्षी बन गई। तब से इस आयोजन ने दुनिया भर का ध्यान आकृष्ट किया और हर जगह लोग गौरैया का जश्न मनाते हैं और उन्हें बचाने के लिए काम करते हैं।
Well, they may be small in size, but they are incredibly strong, Priyanka, very strong. And they can survive in various kinds of climates and adapt really well to both harsh winters and very hot summers. And sparrows are small, but they're significant birds because they play an essential role, which is to maintain ecological balance. And they help control insect populations by feeding on various bugs and pests because they're omnivorous. Additionally, sparrows are key players in pollination and seed dispersal as well. Their presence enhances biodiversity, making them very crucial for the health of both rural as well as urban ecosystems. And in India, sparrows are not just birds. They are a symbol of shared history as well as culture. And as you are also speaking about their different names, Goraiya in Hindi, Kuruvi in Tamil, and Chiriya in Urdu. Sparrows have been a part of daily life for generations long back. They used to fill the air with their cheerful chirps, their cheerful songs, especially in villages also, creating memories for many, which they kind of share the people rural areas.
और अगर आपको याद हो शगुन, कोरोना के समय जब शोर शराबा एकदम बंद हो गया था, दिल्ली शहर की गलियां बिल्कुल साफ और शांत हो गई थी, तो अचानक से गोरैया नजर आने लगी थी. मतलब लिटरली हम देखते थे, इतना खुश हुए कि वो देखो सामने गोरैया नजर आ रही है.
फिर such a beautiful sight.
जी हाँ. फिर उसके बाद जब फिर से चहल पहल शुरू हो गई तो गोरैया का नजर आना फिर कम होता चला गया. शहरीकरण, प्रदूषण, आवास की कमी, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और भोजन की कमी के कारण गोरैया की संख्या में तेजी से गिरावट आई है. शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसले के स्थान भी छीन लिए हैं. आधुनिक इमारतों में घोंसले के लिए आवश्यक स्थान की कमी है, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए जगह कम हो गई है. इसके अलावा कृषि में कीटनाशकों के उपयोग ने कीटों की संख्या को कम कर दिया है, जिससे गोरैया के भोजन की आपूर्ति पर और अधिक असर पड़ा है. इन कारकों के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव ने गोरैया के लिए पनपना मुश्किल बना दिया है.
एंड वेल, फॉर दीज रीजंस प्रियंका, देयर आर सेवरल इंस्पायरिंग एफर्ट्स व्हिच आर अंडरवे ऑलरेडी टू प्रोटेक्ट स्पैरोज एंड ब्रिंग देम बैक इनटू आवर लाइव्स. And one such initiative, let me talk about that, Save the Sparrow campaign, which is led by environmental conservationist Jagat Khinkhabwala. He emphasizes the need to balance development with environmental protection. Development should always go hand in hand with environmental protection. And Prime Minister Modi's support for this campaign in 2017, it has significantly increased the awareness amongst masses.
बिल्कुल, आपने एक पहल की बात की. एक पहल ऐसी ही चेन्नई में भी की गई है कुडुगल ट्रस्ट द्वारा. इस संगठन ने स्कूली बच्चों को गोरैया के घोंसले बनाने में शामिल किया है और बच्चे तो वैसे ही जितना प्रकृति के साथ रहेंगे तो उनका मानसिक विकास भी उतना ही होता
है. True that.
तो बच्चे छोटे लकड़ी के घर बनाते हैं जिससे गोरैया को भोजन और आश्रय मिलता है. 2020 से 2024 तक ट्रस्ट ने 10,000 से अधिक घोंसले बनाए जिससे गोरैया की संख्या में वृद्धि हुई. इस तरह के प्रयास जो है संरक्षण में युवा पीढ़ी को शामिल करने के महत्व को उजागर करते हैं. कर्नाटक के मैसूर में अर्ली बर्ड अभियान बच्चों को पक्षियों की दुनिया से परिचित कराता है और इस कार्यक्रम में एक पुस्तकालय, गतिविधि किट और पक्षियों को देखने के लिए गांवों की यात्राएं शामिल हैं. ये शैक्षिक प्रयास बच्चों को प्रकृति में गोरैया और अन्य पक्षियों के महत्व को पहचानने और समझने में मदद कर रहे हैं. तो हर जगह, हर कोने में गोरैया को बचाने के, उनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं. तो आप भी घर आंगन चहकने वाली गोरैया का संरक्षण करें, ये हम सभी का दायित्व है. पर्यावरण असंतुलन और आधुनिक तकनीक के दौर में मासूम जीवों का अस्तित्व संकट में ना आए, आइए इसके लिए प्रयास का संकल्प लें.
Well, and Priyanka, summer is approaching. Like already the temperature is rising a lot. So I think this is the time where the earthen pots should be filled up with water so that they should not be thirsty.
और right? पानी पी सके और फिर से हमारे छतों पर आके, उसके मंडेर पर आके पानी पिए और हम उसको निहार सके.
Right. And Priyanka, there is also one thing that I would like to add here. They are symbol of hope. Sparrows are often considered as symbols of hope and even though they face a lot of challenges, but they continue to strive in many parts of the world. And World Sparrow Day is a reminder of the importance of preserving our tiny feathered friends, whether it's by planting more greenery, reducing pesticide use, or creating safe nesting spaces. Every small effort, it counts. And by celebrating this particular day, we can help bring these little birds back into our lives, the man's closest feathered friends, and preserve the harmony between nature and humanity, right, Priyanka?
Bilkul.
And now, moving forward, We are also talking about Navroz, the Parsi New Year festival. Let's talk about it now. It is being celebrated today. This festival, which is seen as a harbinger of peace and prosperity, it is the most widely celebrated festival of the Parsi community. And besides celebrations, Navroz is also the day of repentance. This day is dedicated to clean and purify the mind and start a new year with love and peace. Navroz, the Persian New Year, is a 3,000-year-old celebration, 3,000-year-old of spring, rooted in the ancient religion of Zoroastrianism. It begins on the first day of the Iranian calendar with deep reverence for fertility, nature and new beginnings. It's celebrated by Parsi communities worldwide.
बिल्कुल, जीवन के नवीनीकरण के उत्सव के रूप में नवरोज हमेशा मौसमी बदलाव से कहीं बढ़कर रहा है। ये कैसा त्यौहार है जो परिवारों, समुदायों और यहाँ तक कि देशों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। आज नवरोज विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा भी मनाया जा रहा है, जो नवीनीकरण, शांति और समृद्धि की सार्वभौमिक इच्छा को दर्शाता है। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हमारे तेजी से परस्पर जुड़े विश्व में एकीकृत सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में इसके महत्व को उजागर करती है।
एंड वेल, द वर्ल्ड इज रैपिडली चेंजिंग एंड नवरोज सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ आवर शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज। इट चैंपियंस द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पीस प्रिंसिपल्स दैट रेजोनेट डीपली इन आवर मॉडर्न इंटरकनेक्टेड सोसाइटी। एंड बाय सेलिब्रेटिंग दिस, द कम्युनिटीज रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू प्रिजर्व देयर एंशिएंट ट्रेडिशंस while also embracing contemporary influences that enrich their cultural tapestry. Navroz is more than just a calendar event. It is a vibrant, living tradition that celebrates the renewal of nature and the human spirit. And the detailed rituals of cleaning and the meticulous setting of the haft-sin table to the communal feasts, bonfire jumps and street festivals, Navroz invites millions around the world to leave behind the old and welcome the new year with hope and joy.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होने का।
First, Priyanka, we'll begin with Vishakhapatnam. In the heart of Andhra Pradesh's Prakasam district, a transformative initiative, Bangaru Balyam, meaning golden childhood, is unfolding. Spearheaded by District Collector Etha Meemansaria, this program is dedicated to empowering children and safeguarding their rights. We have more on this from our correspondent.
Designed to ensure and protect child rights, Bangaru Balyam program aims to ensure that every child from birth to 18 years leads a happy, healthy, safe and secure life by addressing critical issues such as child marriage, trafficking, labor, lack of quality education and malnutrition. Inaugurated by Nobel laureate and child rights advocate Kailash Sachardi, this program adopts a child-centric approach to development by converging various state and central government schemes. Speaking with Akashwani, Kailash Sachardi said,
and I strongly support this new scheme of Golden Childhood, Bangaru Balyam, that is a great scheme. I'm sure that Andhra Pradesh is going to set the models for the betterment of children, but also for unity, justice, peace and equity in the society.
Bangaru Balyam program emphasizes community involvement, uniting schools, local governance and authorities to protect children's rights. Through collaboration with development and protection agencies, the program ensures that children's well-being is prioritized across all sectors. This program stands as a beacon for the protection of child rights programs across other districts. With inputs from Sachinarayana, this is Sai Sishla for Parikrama from Visakhapatnam.
और अब आगे बढ़ते हैं, जाते हैं पुणे की ओर। और आज हमारे जो संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी है वो है ब्लड डोनेशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि 2024 में 21 लाख रक्तदाताओं के साथ देश में महाराष्ट्र रक्तदाताओं की सूची में शीर्ष पर है। शगुन, ब्लड डोनेशन बहुत ही महान समझा जाता है और कई इसके साथ कई मिथ भी जुड़ी हुई हैं कि अगर आप डोनेट करेंगे ब्लड तो आपके ब्लड में कमी हो जाएगी, आप में बहुत वीकनेस आ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर बढ़ना चाहिए और मानवता के लिए भी सोचना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं, दोबारा से जाते हैं पुणे में, तो पुणे जिले का योगदान रक्तदान करने वालों की संख्या में सबसे अधिक रहा है। महाराष्ट्र की व्यापक रक्त संग्रह प्रणाली ने आवश्यक रक्त घटकों की सुविधा प्रदान की है, जिनका उपयोग रोगी की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। आइए सुनते हैं हमारे पुणे संवाददाता मनोज की ये रिपोर्ट।
पिछले साल जनवरी से अक्टूबर इस अवधि में महाराष्ट्र में 14,83,000 रक्त बैग्स का संकलन किया गया। इसमें पुणे जिले में सबसे अधिक यानी 2,19,000 से अधिक रक्त बैग्स का संकलन हुआ। इसके पहले भी पुणे जिला इस कार्य में अग्रणी रहा है। गर्मी के दिनों में पूरे राज्य में खून की कमी रहती थी, लेकिन आज ये बहुत कम हो गई है। महाराष्ट्र रक्त संग्रह में पूरे भारत में सबसे आगे है और अपने आसपास के 5 राज्यों को भी बड़ी मात्रा में रक्त आपूर्ति कर रहा है। महाराष्ट्र में लगभग 400 अत्याधुनिक ब्लड बैंक है। हर साल विभिन्न स्थानों पर होने वाले लगभग 40,000 रक्त शिविरों से ऐच्छिक रक्तदाताओं के माध्यम से 21 लाख रक्त बैग्स का संचय किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र से हर साल 12 से 15 लाख ब्लड बैग्स की मांग होती है। महानगरों से लेकर तहसील स्तर पर ब्लड बैंक के नेटवर्क के सफल निर्माण के कारण आज महाराष्ट्र देश के अन्य राज्यों की तुलना में एक बड़ा रक्त आपूर्ति करने वाला राज्य बन गया है। प्लाज्मा RDP ये महत्वपूर्ण घटक रक्त से प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में 100 से अधिक बार रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं की संख्या काफी अधिक है। रक्तदान के बारे में गलतफहमियां काफी हद तक दूर होने के कारण रक्तदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। राज्य रक्त संक्रमण परिषद ने रक्त और रक्त घटकों के प्रसंस्करण के लिए निश्चित दरें तय की हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ब्लड बैंक अनुमोदित मूल्य संरचना के भीतर रोगियों को रक्त की आपूर्ति करे। राज्य में महाविद्यालय, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं, गणेश मंडल, कॉरपोरेट कार्यालय और नियमित रक्तदाताओं द्वारा बड़ी मात्रा में रक्तदान किया जाता है। परिक्रमा के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर।
शगुन, हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है। अगर आप किसी भी कोने में जाएं, वहाँ अलग अलग त्योहार आपको मिलेंगे, अलग अलग व्यंजन आपको चखने को मिलेंगे, अलग अलग पोशाक आभूषण देखने को मिलेंगे। तो इस सिलसिले में केंद्र सरकार द्वारा भी उनके प्रोत्साहन में लगा हुआ है। नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय द्वारा सूत संगम प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में देश भर से हथकरघा कलाकारों ने अपने अपने राज्य के मशहूर वस्त्रों और परिधानों को प्रदर्शित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस प्रदर्शनी में आगंतुक बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। आप भी खरीदना चाहते हैं तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट, इसमें क्या क्या खास है।
इस प्रदर्शनी में तमिलनाडु की कांचीवरम साड़ी, जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल, उत्तराखंड का खादी कुर्ता, राजस्थान की कोटा डोरिया साड़ी, पश्चिम बंगाल की जामदानी साड़ी और उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए बिहार से आए प्रदर्शक ने बताया कि इस प्रदर्शनी में आगंतुक उनके रेशम के कई उत्पादों को पसंद कर रहे हैं।
मैं सूत संगम में पहली बार यहाँ आया हूँ और मेरा सिल्क के प्रोडक्ट है, हैंडलूम साड़ी है, सूट है, फैब्रिक है, रॉ सिल्क है, कटिया सिल्क है, बहुत सिल्क आइटम है, तसर मुंगा है और ये हम खुद वीवर से हैं। लोग आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है, जो मार्केट से अलग है फिर भी लोग आ रहे हैं, कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं।
वहीं प्रदर्शनी में आई पूजा ने सूत संगम को लेकर अपना अनुभव साझा किया।
एक्सपीरियंस इज रियली गुड, यहाँ पे काफी ऑथेंटिक चीजें देखने को मिली है। पिछले 2 दिन से मैंने काफी शॉपिंग की है, मैंने साड़ीज खरीदी हैं, 3-4 बेडशीट्स खरीदी हैं, इनकी बेडशीट्स काफी अच्छी है।
16 मार्च से चल रहे इस प्रदर्शनी में आगंतुक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Now, Priyanka, let's talk about largest land mammals on earth. They are elephants, the keynote species who play a vital role in maintaining biodiversity. And to protect elephants, the Tripura Forest Department has written to the National Highways Authority of India to construct at least 3 underpasses for their safe movement. We have more on this from our Agartala correspondent, Kunal Shinde.
Elephants are the largest land mammals living on the earth. The 3 species that inhabit various parts on the earth are the African bush elephant, the African forest elephant, and the Asian elephant. Tripura, a tiny northeastern state in the country, is also blessed to have elephants inhabiting in a sliver parts of the state. The places where the group of 2 herds of elephants traverse in the state are found mainly in Mungya Kami in Khowai district and Adabin in South Tripura and Gomati districts. There are a total of 15 elephants in each herd. However, the reason behind the Forest Department asking the National Highways Authority of India for underpasses and even the Indian Railways to reduce the train speed at a particular stretch is because 2 elephants were killed by a speeding train while they were crossing the tracks in the months of December 2024 and February this year. The area from where elephants normally traverse is called as the elephant corridor, and the time at which their movement takes place is ideally after dark when there is less vehicular and people's movement. Akashvani News spoke with Tripura's Principal Chief Conservator of Forest, Mr. R.K. Samal, on what are the challenges which elephants faced due to shrinking size of land as people have been inhabiting these areas. This is what he had to say.
Amara Tripura mein karib 30 hathi ache, 15 hathi Khwai district mein aur 15 hathi साउथ डिस्ट्रिक्ट में और गुमती डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये एलिफेंट का जो जगह में वो लोग घूमते रहते थे वो ग्रेजुअली श्रिंक कर रहा है, तो एलिफेंट फिर उसमें डिस्टर्ब होते हैं और उनको जब घूमने का उनका जगह कम हो जाता है और खाने पीने का कम हो जाता है वो फिर लोगों का घर के तरफ चले आते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। हवाई डिस्ट्रिक्ट में जो एलिफेंट्स है उनका ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि जगह कम होता है। मुंगियाकामी चंपक नगर NHIDCL का रोड कंस्ट्रक्शन होने का है, उसके लिए हम लोग उधर 3 एलिफेंट अंडरपास देने का उनको कंडीशन लगाए हैं।
इट इज बिलीव दैट विद द कंसर्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ त्रिपुरा NHAI एंड इंडियन रेलवेज द लाइव्स ऑफ दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज इज सेफगार्डेड एंड देयर मे कम अ टाइम व्हेन देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस मेनीफोल्ड टू मेक त्रिपुरा अ सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन फॉर एलिफेंट सफारी। कुणाल शिंदे फॉर परिक्रमा फ्रॉम आकाशवाणी न्यूज अगरतला।
बिल्कुल, हाथी को उनको संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था और इसके अलावा भी प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, तो कई प्रयास जारी हैं। और उधर अगर हम बात करें, झारखंड में पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की पहल तेज कर दी गई है। इस कड़ी में लातेहार जिला अवस्थित पलामू किले के जीर्णोद्धार के लिए सर्वेक्षण कार्य भी शुरू कर रहा है। और आइए जानते हैं सिलसिले में चेरो राजवंश के इस प्राचीन किले के संरक्षण पर अपने संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
महान चेरो राजवंश की भव्यता का प्रतीक 400 वर्ष पुराने पलामू किले को सजाने संवारने की कवायद तेज कर दी गई है। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में चेरो वंश के गौरव का प्रतीक पलामू किला के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी इसके संरक्षण की आवश्यकता बताई थी। इसके लिए हेरिटेज कंस्ट्रक्शन की टीम ने पिछले दिनों पुराने और नए दोनों किलों का जायजा लिया। टीम लीडर श्री देवी सिंह ने सबसे पहले किले के भग्नावशेषों का गहन अध्ययन किए जाने की जरूरत बताई। पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेश कांत जेना बताते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर पलामू किला के कायाकल्प के लिए एक टेक्निकल टीम रिसर्च कर रही है। पलामू टाइगर रिजर्व की एक टीम सर्वे करने वाली टीम की मदद में जुटी हुई है। रिसर्च टीम का सहयोग कर रहे समाज सेवी कमलेश सिंह ने कहा कि पलामू किले के जीर्णोद्धार से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पलामू किला लातेहार जिले के बेतला में अवस्थित है। दस्तावेजों के अनुसार पुराने पलामू किला का निर्माण चेरो वंश के राजा प्रताप राय ने 1628 से 1658 ईस्वी के बीच करवाया था, जबकि नए पलामू किला का निर्माण प्रतापी राजा मेदनी राय ने 1658 से 1674 ईस्वी के बीच करवाया था। परिक्रमा के लिए पलामू से अपने संवाददाता जसप्रीत सिंह के साथ रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट।
और अब झारखंड के नज़दीक चलते हैं बिहार में, जो अक्सर राजनीतिक हलचल की वजह से चर्चा में रहता है। पर पिछले दिनों राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी की मेज़बानी के बाद बिहार की राजधानी पटना में आज से सेपक टाकरा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। ब्यौरा लेते हैं अपनी संवाददाता से।
बिहार में आज से सेपक टाकरा विश्व कप का रोमांच देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना के पुत्र खेल परिसर में आयोजित हो रहे इस विश्व कप में भारत, थाईलैंड, जापान, ब्राजील, फ्रांस, इटली, मलेशिया और ईरान समेत 20 देशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सेपक टाकरा फेडरेशन स्टाफ के सहयोग से बिहार पहली बार इस विश्व कप की मेजबानी कर रहा है।
इसमें 20 देश भाग ले रहे हैं। सेपक एक ही गेम है और उसमें मेन एंड वुमेन होगा और उसमें तीन तीन इवेंट है, जिसमें डबल्स है, रेगु है और ट्रिपल्स है। इस तरह का दो तीन इवेंट्स है हर सेक्शन में। ये 20 से 25 तारीख तक होगा और 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और हमारा दो डिप्टी सीएम साहब लोग हैं श्री श्यामराज चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी उनके माध्यम से और अध्यक्षता हमारा खेल मंत्री महोदय के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा।
प्रतियोगिता के पहले दिन कुल 30 मैच खेले जाएंगे। अब से कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि सेपक टाकरा तीन खेलों फुटबॉल वॉलीबॉल और जिम्नास्टिक का मिश्रण है। इसे किक वॉलीबॉल यानी पैरों से खेले जाने वाला वॉलीबॉल भी कहा जाता है। इसमें खिलाड़ी हाथों की जगह पैरों घुटनों छाती और सिर का इस्तेमाल कर गेंद को नेट के पार करते हैं। सेपक टाकरा का इतिहास देखें तो अब तक इस विश्व कप में थाईलैंड का दबदबा रहा है। वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया के डेजोन में खेले गए विश्व कप में भारतीय टीम मिक्स इवेंट में चैंपियन रही थी। अब देखना है कि इस बार बिहार की जमीन पर आयोजित इस विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है और विश्व कप किसके खाते में जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं डॉक्टर सविता पारी।
Focusing now on business updates today, the benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 1%, boosted by buying across all sectors and positive global cues after the US Federal Reserve upheld its rate cut projection for the year. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, climbed 899 points to close at 76,348. The National Stock Exchange Nifty 50 also rose to 283 points to settle at 23,191.
और खेल मैदान की हलचल जानते हैं। एएफसी बीच सॉकर एशियन कप 2025 में आज शाम भारत का सामना थाईलैंड से होगा। थाईलैंड के पटाया में ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that
In today's episode, we remember Gandhian freedom fighter, Deenbandhu Charles Freer Andrews, who came to India on the 20th of March 1904 and joined the St. Stephen's College in Delhi. During his long stay in India, the British social reformer identified himself with the socio-economic and political problems of the Indian masses. He fought against the British racial and imperial rule with the support of Mahatma Gandhi, Gopal Krishna Gokhale, and other prominent Indians. He also had a deep connection with Rabindranath Tagore, who invited him to Shantiniketan on several occasions.
Along with Mahatma Gandhi, Andrews also worked in Africa against the system of indenture and succeeded in procuring the basic rights for Indians there. Indians called him Deenbandhu, the friend of the poor and oppressed. Andrews was a very well-known writer and wrote about a dozen of major works along with hundreds of articles which had deep linkage with the life of common Indian as well as the problems of mankind. Talking about C.F. Andrews, Gandhiji had said,
He was a good son of England and he became also a son of India. I have not met a better man or better Christian.
और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं। उड़िया पत्रकारिता के जनक और स्वतंत्रता सेनानी शशिभूषण रथ की आज पुण्यतिथि है। पत्रकारिता के अभाव में उड़ीसा की जन भावना प्रकट नहीं हो पाती थी। इस अभाव को दूर करने के लिए शशिभूषण रथ ने 1913 में आशा नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला। ये उस प्रांत में पत्रकारिता का आरंभ था।
Today, we are also remembering Kenneth Ray Rogers, singer and songwriter. He was inducted into the Country Music Hall of Fame in 2013 and he has sold more than 100 million records and his songs span multiple genres, jazz, folk, pop, rock and country. And for you listeners, we have this wonderful song to listen to.
Single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old.
फिल्मों के शुरुआती दौर में सिनेमा लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज से गूंजता था, लेकिन 80 के दशक में एक और सिंगर आई जिन्होंने अपने 4 दशक लंबे करियर के दौरान 25 भाषाओं में 22,000 से अधिक गाने गाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। हम बात कर रहे हैं जानी मानी गायिका अलका याग्निक की। आज उनका जन्मदिन है। उन्हें हम है राही प्यार के इस गीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और हमारा तो कार्यक्रम पूरा हो गया, अधूरा नहीं रहा, तो समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए, प्रियंका और शगन को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की।
नमस्कार, नमस्कार।